दर्शन की आवाज़ में राष्ट्रभाषा हिंदी। राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राजभाषा का अर्थ है राजा या राज्य की भाषा, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है, और राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है, जैसे वर्तमान काल में भारत सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक हित के व्यवसायों के अतिरिक्त कुछ प्रादेशिक सरकारों के, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में राजकाज हिंदी में होता है। तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश की सरकारें अपनी अपनी भाषाओं में कार्य करती हैं, हिंदी में नहीं। राजभाषा का क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव होता है, क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएँ जुड़ी रहती हैं। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो तो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वह अपने देश की भी हो सकती है, किसी गैर देश से आए शासक की भी हो सकती है। अकबर के समय से लेकर मैकाले के समय तक फारसी राजभाषा रही, और स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले यहाँ अंग्रेजी थी, अब भी है। देश की संस्कृति से राजभाषा का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। राष्ट्रभाषा सदा कोई स्वदेशी भाषा ही होगी। भारतीय जनता के व्यवहारों का आदान प्रदान फारसी या अंग्रेजी में निश्चय ही नहीं होता था, न अब हो सकता है। राजभाषा की अभिव्यक्ति सीमित विषयों तक होती है, विधि, सरकारी परिवहन, प्रशासन आदि, और यह अभिव्यक्ति शैली क्रमशः रूढ़ और रूच हो जाती है, जिसमें लालित्य, मुहावरे, दारी या शैली वैविध्य का कोई स्थान नहीं। हर दफ्तर की बनी बनाई शब्दावली है, वाक्यों का एक ढर्रा है। राष्ट्रभाषा का संबंध जीवन के प्रत्येक पक्ष से है। उपयुक्त विवेचन से यह न समझा जाए कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में कोई परस्पर लगाव है ही नहीं। राजभाषा राष्ट्रभाषा पर अपना प्रभाव डालती है। कारण यह है कि जो भाषा राजभाषा के पद पर आसीन होती है, लोग उसी में शिक्षा पाना आवश्यक समझते हैं। रोजी रोटी, सामाजिक प्रतिष्ठा, भौतिक लाभ के लिए युवा वर्ग में उसी भाषा का बोलबाला होता है। शासक की भाषा का अनुकरण होने लगता है। कचहरी और सरकारी कार्यालयों में संपर्क रखने वाले लोगों के लिए वही भाषा जनसाधारण में प्रचलित होती है। मध्य युग में फारसी का और आधुनिक युग में अंग्रेजी का हिंदी पर जो प्रभाव पड़ा है और आज भी पड़ रहा है, वह सर्वविदित है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा की स्वाभाविक और आंतरिक प्रगति में बाधा पहुँचाती है। राष्ट्रभाषा की आवश्यकता। बाइबिल में बेबीलोनिया के मीनार की एक कथा आती है कि आदम के बेटों ने आसमान तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ा मीनार बनाना चाहा। ईश्वर ने देखा कि ये लोग स्वर्ग तक पहुंचकर मेरी बराबरी करने लगेंगे। इन लोगों की एक भाषा थी और वे मिलकर काम करते ऊपर चढ़ते जा रहे थे। ईश्वर ने अब इन्हें भिन्न भिन्न भाषाएं देकर टिटर बिटर कर दिया। भाषा की विभिन्नता के कारण अब ये एक दूसरे की बात ही न समझ सकते थे। वे आपस में लड़ने लगे। झगड़े में मीनार भी टूट फूट गया। जिस देश के लोग एक भाषा के सूत्र में बंधे रहते हैं, उनके भावों और विचारों में एक रूपता आती है। भाषा की विभिन्नता के कारण राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता जागृत नहीं हो सकती। प्रत्येक समुन्नत स्वतंत्र स्वाभिमानी देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जापान, सभी देशों में वहाँ की व्यापक बहुप्रचलित भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में व्यवहित होती है। आयरलैंड के पुनर्जागरण के साथ ही गैलिक भाषा को पुनर्जीवित करने का तीव्र प्रयत्न किया गया होता, तो राजनीतिक चेतना का विकास न हो पाता। परतंत्रता के कारण गैलिक भाषा का ज्ञान लुप्त प्राय हो गया था। नई पीढ़ी के युवक तो उसे बिल्कुल नहीं जानते थे। जो जानते थे वे बोलने में लजाते थे। वहाँ के अग्रगण्य नेता डी वेलेरा ने 100 वर्ष बूढ़े मोची से गैलिक भाषा सीखी, क्योंकि वे कहते थे मैं इसके बल पर स्वाधीनता प्राप्त करूंगा। उन्होंने यह कर दिखाया। देखते देखते सोई हुई भाषा जाग उठी और सारे देश में फैल गई। आयरलैंड ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से आजाद हो गया। यह कथा निश्चय ही उत्साहवर्धक है। आयरिश कवि टॉमस डेविट ने कहा, कोई राष्ट्र अपनी मातृभाषा को छोड़कर राष्ट्र नहीं कहला सकता। राष्ट्रभाषा की रक्षा सीमाओं की रक्षा से भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि वह विदेशी आक्रमण को रोकने में पर्वतों और नदियों से अधिक समर्थ है। जो लोग स्विट्जरलैंड में वर्तमान 4 भाषाओं की बात उठाकर एक राष्ट्रभाषा की बात नहीं मानना चाहते, वे मानो कहना चाहते हैं कि मजबूरी और दोष पूर्णता में भी जिया तो जा ही सकता है। अफ्रीका के 10 देश इसी शताब्दी में स्वतंत्र हुए। उनका सांस्कृतिक रिक्त प्रायः शून्य है। उनकी साहित्य की या भाषाई परंपरा कोई लंबी चौड़ी नहीं है और कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी नहीं है। एक भाषा है जिसके बल पर प्रत्येक जाति में विदेशी आधिपत्य से मुक्ति पा ली है। हमारे देश के साथ साथ लंका, वर्मा और पाकिस्तान में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हुई। इन सभी देशों की अपनी अपनी भाषा है, जिसमें सबका कार्य व्यवहार होता है। खेद है कि एक भारत ऐसा देश है जहाँ राष्ट्रभावना और राष्ट्रभाषा एक समस्या बनी हुई है। हिंदी सारी देश की सामान्य भाषा रही है। जो भाषा थोड़ी बहुत सारे राष्ट्र में बोली और समझी जाती है, वह अपने इसी कुल से राष्ट्रभाषा होती है। प्रसंगवश यहाँ बता देना आवश्यक ज्ञान पड़ता है, किसी देश की राजभाषा भले ही कोई हो, परंतु उसकी राष्ट्रभाषा अपनी ही होनी चाहिए। भारत में अकबर के समय से लेकर लगभग 3 शताब्दी तक फारसी राजभाषा रही, और 1833 के बाद से निचले स्तर पर उर्दू और उच्च स्तर पर अंग्रेजी राजभाषा रही। परंतु जैसा कि हम सभी देखेंगे, सारे देश की संपर्क भाषा हिंदी ही है। राजभाषा वह है जिसके माध्यम से राजकार्य होता है, कचहरियों का काम, सरकारी आदेश, सूचनाएं और विज्ञापन, एक दूसरे का दूसरे प्रदेश से शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार आदि आदि। राष्ट्रभाषा वह है जिसके माध्यम से पूरे देश के नागरिक आपस में बोलते समझते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं अथवा सर्वदेशिक साहित्य पर साहित्य का सृजन करते हैं। भारत में युग युग से मध्य देश की भाषा सारे देश का माध्यम बन जाती है। संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिंदी क्रमशः प्रत्येक युग में संपूर्ण देश की में प्रयुक्त होती रही है। भले ही राजनीतिक दृष्टि से भारत खंड की एकता हाल की चीज हो, किंतु यहाँ पर सांस्कृतिक एकता सदा बनी रही है और एक भाषा का विस्तार भारतीय संस्कृति के विस्तार के साथ होता रहा है। सैकड़ों वर्ष में जिस किसी को जनसंपर्क की आवश्यकता हुई, चाहे वह शासक हो, धार्मिक हो या सामाजिक नेता हो, चाहे लेखक हो, जिसने हिंदी का प्रयोग किया, हिंदी के आदिकाल का सारा साहित्य हिंदी प्रदेश के बाहर रचा गया। नाथ साहित्य पश्चिम में, सिद्ध और साहित्य और ब्रजबोली, ब्रजभाषा और बंगला का मिश्रित साहित्य पूर्व में, बहुत सा कृष्ण साहित्य उड़िया और नेपाली में और आदि भक्ति साहित्य महाराष्ट्र और गुजरात में लिया गया। युग युग से तीर्थयात्रियों और व्यापारियों तथा कलाकारों की भाषा हिंदी रही। सारे भारत में राग रागिनियों की भाषा सदा से ब्रजभाषा रही है। दक्षिण के आचार्यों ने हिंदी की आदिकाल से ही अनुभव किया था, इस भाषा के माध्यम से वे सारे देश की जन जन तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। वल्लभाचार्य, विट्ठल, रामानुज, रामानंद आदि इसकी राष्ट्रीय महत्ता को समझ कर इसे अपने व्यवहार में लाते रहे। दक्षिण में राष्ट्रकूटों और यादवों का जब राज्य स्थापित हुआ, तब वहाँ हिंदी का प्रचार हुआ। विजयनगरम दरबार में हिंदी को विशिष्ट स्थान प्राप्त था। मछलीपट्टम के नादुल्ल पुरुषोत्तम कवि ने 32 हिंदी नाटकों की रचना की। इसके अलावा और भी बहुत से नाटककार और कवि हुए हैं। मुस्लिम साम्राज्य के दक्षिण भारत में विस्तार के साथ साथ हिंदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि प्रदेशों में फैली। अलाउद्दीन खलजी के समय से ही उत्तर के राज कर्मचारी, सैनिक और व्यापारी दक्षिण भारत में फैल गए थे। मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को दौलताबाद कहकर अपनी राजधानी बनाया और सेना के अलावा दिल्ली और हरियाणा की जनता को भी वहां ले गया। उन लोगों के वंशज आज भी वहां सारे दक्षिण भारत में फैले हुए हैं। एक समय बहमनी राज्य की स्थापना हुई। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर में अलग अलग राज्य स्थापित हुए। वे सब दक्षिण हिंदी के केंद्र बन गए। वहाँ प्रचुर साहित्य मिला लिखा गया। दक्षिणी हिंदी के लेखकों में बंदा निवाज 1322 से 1423 से लेकर मुल्ला वजही 1550 से 1607 ईस्वी, शाह मीराजी और बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम अली शाह द्वितीय 1580 से 1686 ईस्वी तथा गोलकुंडा के सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह राज्यकाल 1611 से 1626 ईस्वी तक बीसियों के नाम गिनाए जा सकते हैं। केरल में त्रिवनांकुर के राजा स्वाति तिरुनाल श्री राम वर्मा जन्म 1813 ईस्वी ने और इसके पूर्व तंजोर के भोसल वंशीय शाहजी महाराज शासनकाल 1684 से 1712 ईस्वी ने हिंदी में गीत रचना की। मलयालम में संस्कृत शब्दावली का बाहुल्य है, इस नाते वे अन्य द्रविड़ भाषाओं की अपेक्षा हिंदी के अधिक निकट है। केरल और तमिलनाडु के बंदरगाहों में उत्तर भारत के व्यापारी हिंदी का प्रभाव डालते रहे। स्वयं केरल के लोग, विशेषता नर्सें और सरकारी कर्मचारी, पूरे भारत में फैले हुए हैं और सर्वत्र बड़ी आसानी से हिंदी का व्यवहार करते हैं। महाराष्ट्र में नाथ योगियों, महानुभाव संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय और विठल संप्रदाय ने दूर दूर तक हिंदी का प्रचार किया। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम आदि की रचनाओं में हिंदी के ढेरों पद्य मिलते हैं। संत देवराज महाराज 1654 से 1721 ईस्वी में विदर्भ में हिंदी के माध्यम में भक्तिपूर्ण पद लिखे। शिवाजी के दरबार में हिंदी कवियों को मान्यता प्राप्त थी। उनके पुत्र संभाजी हिंदी के कवि थे। 18वीं शताब्दी में पेशवा, सिंधिया और होलकर आदि मराठी घराने हिंदी में अपना राजकाज करते थे। वर्तमान युग में महाराष्ट्र की राजधानी बंबई में हिंदी ही हिंदी व्याप्त है। हिंदी सिनेमा का और व्यापार का घर होने के कारण बंबई में रहने वाले पंजाबियों, गुजरातियों, हिंदी भाषियों, दक्षिणाथियों और महाराष्ट्रीय बंधुओं की सामान्य भाषा हिंदी ही है। राजधानी की भाषा का प्रभाव सारे प्रदेश पर पड़ता है। मराठी और हिंदी की लिपि एक ही है, देवनागरी। गुजराती और ब्रजभाषा में कोई विशेष अंतर नहीं है। सूरदास और नरसिंह मेहता की रचनाएं इसका प्रमाण है। वृंदावन से लेकर द्वारका तक कृष्ण का लीला क्षेत्र कहा गया है और वहाँ कृष्ण भक्ति का विस्तार रहा है। निर्गुण संतों और सभी सूफियों ने भी गुजरात में हिंदी के प्रचार का काम किया है। राजकोट और सौराष्ट्र के राजाओं और भक्तों की रचनाएं हिंदी प्रभाव का साक्षी है। पंजाब के सिख गुरुओं और सूफी फकीरों ने अपना प्रचार खड़ी बोली मिश्रित ब्रजभाषा में किया। उनकी वाणियाँ उपलब्ध हैं। पटियाला क्षेत्र से उपलब्ध पुराने ग्रंथों की खोज से पता चलता है कि वहाँ अनेक कवि और ग्रंथकार हुए जिनकी रचनाएं खड़ी बोली हिंदी में है। तब तक हिंदी में कहीं अन्यत्र गद्य साहित्य नहीं लिखा गया था। आर्य समाज के प्रचार के फलस्वरूप हिंदी पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में पंजाब के लेखकों श्रद्धाराम फिल्लाड़ी से लेकर सुदर्शन तथा पाल और उपेंद्रनाथ अस्क तक का महत्वपूर्ण स्थान है। जनसामान्य के लिए हिंदी और पंजाबी की शब्दावली और इनके उच्चारण में कोई विशेष अंतर नहीं है। व्याकरण में भी कोई कठिनाई नहीं जान पड़ती। उड़ीसा की सीमा मध्य प्रदेश और बिहार के साथ लगी हुई है। भक्ति आंदोलन के साथ ही यह प्रदेश हिंदी के साथ जुड़ गया। चैतन्य महाप्रभु के प्रचार से ब्रजबोली का और कबीर पंथियों के प्रभाव से हिंदी का व्यापक प्रचार हुआ। जगन्नाथपुरी पुराना तीर्थस्थान है और यहाँ का बच्चा बच्चा हिंदी से परिचित रहा है। भारत के सभी तीर्थस्थानों की यही स्थिति है और वहाँ हिंदी जनभाषा है। उड़ीसा के अनेक कवियों की ब्रजभाषाएँ कविताएँ और वर्तमान समय में लेखकों का हिंदी गद्य पद्य की रचनाएँ उपलब्ध हैं। बंगाल में भी भक्ति आंदोलन के साथ ही हिंदी का प्रचार होने लगा। चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रचार हिंदी मिश्रित बंगला भाषा में किया, जिसे ब्रजबुली कहा जाता है। सूफियों के द्वारा भी अवधि का प्रसार हुआ। वैसे भी बंगला भाषा मागधी प्रकृत से उद्भूत हुई है, अतः यह सदा मगध की बोली अर्थात बिहारी से प्रभावित होती रही है और उसे प्रभावित करती रही है। कलकत्ता महानगरी भारत की राजधानी रही है। इसकी आबादी में बहुत भारी अनुपात हिंदी भाषियों, बिहारी मजदूरों, पश्चिमी प्रदेश के व्यापारियों, विशेषतः मारवाड़ियों का है। राजधानी का प्रभाव सारे प्रदेश पर पड़ता है। हिंदी के पहले पहल प्रकाशित होने वाले पत्र कलकत्ता से निकले। भारत में विश्वविद्यालयों में सबसे पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय में हिंदी को एमए के पाठ्यक्रम में स्थान मिला और कई तरह की सेवाएं बंगाल ने हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए दी हैं। असम के शंकरदेव आदि संतों ने हिंदी को अपने सांस्कृतिक प्रचार और साहित्य का माध्यम बनाया। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि हिंदी दीर्घकाल से देश के जन जन में पारस्परिक संपर्क की ही नहीं साहित्य की भी अखिल भारतीय भाषा रही। कबीर, तुलसी और सूर की वाणी आज भी उन लोगों के कंठों से प्रतिध्वनित हो रही है जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है। मुसलमानों के आरंभिक काल से लेकर शासन में हिंदी सर्वमान्य थी। सिक्कों पर सारी सूचना हिंदी में रहती थी। शाही फरमानों में भी हिंदी का प्रयोग होता था। मुगल काल में भले ही फारसी राजभाषा हो गई, किंतु हिंदी का प्रयोग शासन में वैकल्पिक रूप से होता ही था, क्योंकि जनता में हिंदी ही सार्वदेशिक भाषा थी। अंग्रेजी राज्यकाल में राष्ट्रभाषा हिंदी। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी का प्रचार प्रसार जोरों से हुआ। ईसाई मिशनरियों ने पहले तो अपने प्रचार का अखिल भारतीय माध्यम हिंदी को बनाया था। उन्होंने अनुभव किया कि जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए हिंदी ही एकमात्र साधन है। उन्होंने हिंदी के व्याकरण लिखे, शब्दकोश तैयार किए और अपने धार्मिक ग्रंथों के अनुवाद किए। श्रीरामपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, आगरा इसके विशिष्ट केंद्र थे। मद्रास के लेफ्टिनेंट थॉमस रोबक 1807 ईस्वी ने हिंदी या हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान की महाभाषा कहा और अपने शिक्षा गुरु जॉन गिलक्रिस्ट को लिखा, भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ते से लेकर लाहौर तक, कुमायूं के पहाड़ों से नर्मदा तक, अफगानों, राजपूतों, मराठों, जाटों और सिखों, प्रदेशों के सभी कबीलों में जहां मैंने यात्रा की, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी है। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या जावा से सिंधु के मुहाने तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिंदुस्तानी बोल लेते होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के और आदेशों हिंदी में छपते थे और बहुत सा प्रशासकीय कार्य भी हिंदी में होता था। कंपनी सरकार ने प्रशासकीय कार्य के लिए हिंदुस्तानी सिखाने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। वह इस आवश्यकता और वस्तुस्थिति का प्रमाण है कि आधुनिक भाषाओं में हिंदुस्तानी एक ऐसी भाषा है जिसके बिना कोई सार्वदेशिक कार्य नहीं हो सकता। एसटी कोलब्रुक ने एशियाटिक रिसर्च में लिखा, जिस भाषा का व्यवहार भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं और जो पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों की साधारण बोलचाल की भाषा है और जिसको प्रत्येक गांव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिंदी है। भारतीय भाषाओं के सबसे बड़े विज्ञानी सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को भारत की सामान्य भाषा कहा है। राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी। भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से संघर्ष का आरंभ 1857 ईस्वी में हो चुका था। उत्तरी भारत में जगह जगह हिंसात्मक संघर्ष छिड़ गया। उसमें दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम विशेषतया उल्लेखनीय है। वो अपने अपने ढंग से लड़े, कोई भावात्मक स्तर पर अथवा राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई नहीं हुई, इसलिए अंग्रेजों ने इस लड़ाई को दबा दिया। यह अनुभव किया जाने लगा कि भावात्मक या राष्ट्रीय एकता के लिए एक सामान्य भाषा की परम आवश्यकता होगी, वही सबको जोड़ सकती है। राजा राम मोहन राय ने कहा कि इस समय समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। वे स्वयं हिंदी में पढ़ते लिखते थे और दूसरों को प्रोत्साहित करते थे। ब्रह्म समाज के अन्यतम बंगाली नेता केशव चंद्र सेन ने अपने पत्र सुलभ समाचार 1973 ईस्वी में लिखा, यदि भाषा एक न होने पर एकात्मकता नहीं है तो उसमें क्या आश्चर्य, फिर भारतीय एकता कैसे हो। इस विषय पर लिखा, उपाय यह है कि भारत में एक ही भाषा का व्यवहार हो। इस समय जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित है उसमें हिंदी भाषा सारी जगह प्रचलित है। इस हिंदी भाषा को अगर भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाई जाए तो यह काम सहज ही और शीघ्र संपन्न हो सकता है। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद यद्यपि गुजराती ब्राह्मण थे और गुजराती और संस्कृत के अच्छे जानकार थे, तथापि उन्होंने अपना सारा धार्मिक साहित्य हिंदी में लिखा। वे इस आर्य भाषा को सर्वात्मना देशोन्नति का मुख्य आधार मानते थे। उन्होंने हिंदी के प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। वे कहते थे, मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहती है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा समझने और बोलने लग जाए। थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका एनी बेसेंट ने कहा था, भारतवर्ष के भिन्न भिन्न विभागों में जो अनेक देशी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें एक भाषा ऐसी है जिसमें शेष सब भाषाओं की अपेक्षा एक बड़ी भारी विशेषता है, वह यह कि उसका प्रचार सबसे अधिक है। वह भाषा हिंदी है। हिंदी जानने वाला आदमी संपूर्ण भारतवर्ष में मिल सकता है और वह भारतवर्ष भर में यात्रा कर सकता है। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। 1857 के विद्रोह के उपरांत देश के अंग्रेजों के विरुद्ध जो बदले की भावना तीव्र रूप में उठी, उसने देश प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और उस चेतना को जगाने के लिए राष्ट्रभाषा की चेतना को जागृत किया। स्वाधीनता के लिए संघर्ष और राष्ट्रभाषा। राष्ट्रीय भावना को संगठित और राष्ट्रव्यापी रूप देखने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा कांग्रेस की स्थापना हुई। आरंभ में कांग्रेस की नीति सरकार के साथ मिलकर देशवासियों को जागृत करने की थी, परंतु धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार की नीतियों से खिन्न होकर अंग्रेज राज्य का विरोध होने लगा और जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन गहराता गया, हिंदी का महत्व बढ़ता गया। कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि कांग्रेस अपने सभी कार्यों में, प्रादेशिक समितियों के कार्य में प्रादेशिक भाषा और हिंदी का प्रयोग करे। विदेशी राज्य के विरोध के साथ विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार होने लगा और स्वदेशी की भावना तीव्र होती गई। विदेशी भाषा का बहिष्कार और स्वदेशी भाषाओं का प्रचार व्यापक रूप से होने लगा। कांग्रेस अधिवेशनों के साथ राष्ट्रभाषा सम्मेलन होने लगे। हिंदी नाना भाषियों के बीच सहयोग सूत्र बन गई। हिंदी के माध्यम से ही जनता में राष्ट्रीय स्वाधीनता की आकांक्षा फैली। तब सभी नेता हिंदी के समर्थक थे। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र की भावना को मुखरित किया और भारतवासियों से आग्रह किया कि वे हिंदी सीखे। उन्होंने लिखा, राष्ट्र के संगठन के लिए आज ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसे सर्वत्र समझा जा सके। किसी जाति को निकट लाने के लिए भाषा का होना महत्वपूर्ण तत्व है। एक भाषा के माध्यम से ही आप अपने विचार दूसरों पर व्यक्त कर सकते हैं। तिलक के उत्तराधिकारी NC केलकर ने लिखा, मेरी समझ में हिंदी भारतवर्ष की सामान्य भाषा होनी चाहिए, यानी समस्त हिंदुस्तानी बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। प्रांतिकारियों के लिए तो प्रांतीय भाषाएं ही चली, लेकिन एक प्रांत के लिए दूसरे प्रांत में मिले तो परस्पर विचार विनिमय का माध्यम हिंदी होनी चाहिए। इस विषय में कोई प्रांतीय भाषा हिंदी का स्थान नहीं ले सकती। महाराष्ट्र के महापंडित डॉक्टर भंडारकर का भी यही मत था कि भिन्न भिन्न प्रदेशों की एक सामान्य भाषा बनने का सम्मान हिंदी को ही मिलनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वीर विनायक दामोदर सावरकर, गोखले, गार्गिल, काका कालेलकर आदि नेताओं ने महाराष्ट्र को जो जीवन प्रदान किया, महाराष्ट्र के लोग आज भी उसका अनुसरण करते हुए हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए प्रयत्नशील है। भारत की अखंडता पर बंगाल के नेता विशेषतः सोचते विचारते रहते थे। उन्होंने हिंदी को एक अखिल भारतीय एकता की दृष्टि से देखा। कांग्रेस की स्थापना से बहुत पहले 1864 ईस्वी के आसपास बंगाल के नेता डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र ने देश प्रेम के लिए हिंदी का प्रबल समर्थन किया। 1882-86 में नारायण बोस, भूदेव मुखर्जी और नवीन चंद्र राय ने राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी की अनिवार्यता प्रबल लिया। वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंग दर्शन में लिखा था, हिंदी भाषा की सहायता से भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों के मध्य जो एक के बंधन संस्थापन करने में समर्थ होंगे वही सच्चे भारत बंधु पुकारे जाने योग्य है। उन्होंने विश्वास के साथ भविष्यवाणी की थी कि हिंदी एक दिन भारत की राष्ट्रभाषा होकर रहेगी। महायोगी श्री अरविंद ने कहा, अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए हिंदी को सामान्य भाषा के रूप में जानकर हम प्रांतीय भेदभाव नष्ट कर सकते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1918 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष थे। उन्होंने अपना अभिभाषण हिंदी में पढ़ा और कहा कि हिंदी प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि आजकल जो काम अंग्रेजी में लिया जाता है वह आगे चलकर हिंदी से लिया जाए। 1929 ईस्वी में फिर कहा, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी प्रचार से मिलेगी उतनी दूसरी किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। अपनी प्रांतीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिए, उसमें कोई बाधा नहीं डालना चाहिए और न हिंदी या हम किसी की बाधा ही सहन कर सकते। इन सारे पर सारे प्रांतों की सार्वजनिक भाषा का पद हिंदी या हिंदुस्तानी को ही मिला है। नेहरू रिपोर्ट में भी इसकी सिफारिश की गई, यदि हम लोगों ने तन्मन धन से प्रयत्न किया तो वह दूर नहीं जब भारतीय भारत स्वाधीन होगा उसकी राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। इस तरह के भाव रविन्द्रनाथ टैगोर, रामानंद चटर्जी, सरोजिनी नायडू, सदानंद मित्र और अन्य मूर्धन्य विद्वानों, विचारकों, देशभक्तों ने समय पर व्यक्त किए। आचार्य चिटिमोहन सेन यहाँ तक कहा गया है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने हेतु जो अनुष्ठान हुए हैं उनको मैं संस्कृत का राजसूय यज्ञ समझता हूँ। गुजरात की आवाज़ को स्वामी दयानंद ने ऊंचा किया था, उनके स्वर में स्वर मिलाकर राष्ट्रभाषा प्रचार के कार्य को स्वतंत्रता आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने अग्रसर किया। 1917 ईस्वी में गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि राष्ट्र की भाषा अंग्रेजी नहीं हो सकती और फिर अगले वर्ष कांग्रेस के इंदौर अधिवेशन में स्पष्ट किया कि मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की भाषा हो सकती है और होनी चाहिए। वे कहते थे, हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। उन्होंने सैद्धांतिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा की व्याख्या करते हुए कहा, राष्ट्रभाषा होने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। वह भाषा राष्ट्र के बहुसंख्यक लोग जानते बोलते हो, दूसरा जो सीखने में सुगम हो, तीसरा जिसके द्वारा भारतवर्ष के धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार निभ सके और चौथा जो क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति के ऊपर निर्भर न हो। इसका तात्पर्य यह है कि कोई विदेशी भाषा किसी दूसरे देश की राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। गांधी जी मानते थे कि राष्ट्रभाषा के सारे गुण भारत की भाषाओं में केवल हिंदी में मिलते हैं। 1936 में गांधी जी ने कहा, अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ना है तो चाहे कोई माने या ना माने, राष्ट्रभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी और भाषा को नहीं मिल सकता। अगर स्वराज अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का उन्हीं के लिए होने वाला है तो निसंदेह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों भूखे मरने वालों, निरक्षरों, दलितों और अंत्यजों का हो और उन सब के लिए होने वाला हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। इन लक्षणों से युक्त हिंदी की क्षमता करने के लिए दूसरी कोई भाषा है ही नहीं। हिंदी भाषा का निर्माण राष्ट्र के योग्य ही हुआ है। वह बहुत वर्षों पहले राष्ट्रभाषा की भांति व्यवहित हो चुकी है। महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही वर्धा और मद्रास में राष्ट्रभाषा प्रचार समितियां स्थापित हुई। जिनके हजारों प्रचारकों ने इस समय तक हिंदी प्रदेश में हजारों लाखों की हिंदी सिखाई है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास के स्थापना गांधी जी ने की। इसकी शाखाएं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी खुली। काका साहब कालेलकर और मोतरी सत्यनारायण जैसे महान विद्वान और नेता हिंदी प्रचारक बनकर दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार करते थे। दक्षिण भारत में ही नहीं, अन्य हिंदी प्रांतों में भी राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करने के लिए इन्हीं प्रांतों के लोगों में से जो वर्षों सेवा करते थे। आश्रम में आश्रम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी या समय साहित्य परिषद ने हिंदी का जोरदार आंदोलन चलाया। उड़ीसा में जगह जगह हिंदी शिक्षण मंदिर स्थापित हुए। उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार परिषद ने या सभा ने हिंदी विद्यापीठों और हिंदी परीक्षाओं की शुरुआत की। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा, हिंदी विद्यापीठ बम्बई, गुजरात विद्यापीठ और महाराष्ट्र राष्ट्रसभा पुणे, हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद आदि प्रचार सभाओं ने अपने अपने प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किए। आज तक ये संस्थाएं सक्रिय हैं। इस प्रकार महात्मा गांधी के प्रयत्नों से पूरे देश में राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ और भाषा की एकता के साथ गांधी जी ने देश को एक करने में भारी सफलता प्राप्त की। राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रभाषा पर्यायवाची हो गए। गुजरात के अन्य नेताओं ने भी सदा हिंदी का पक्ष पोषण किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 1940 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष हुए। उन्होंने अपना अभिभाषण पहले हिंदी में पढ़ा और बाद में अंग्रेजी में। प्रसिद्ध साहित्यकार, राजनीतिज्ञ और नेता कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का मत है, भारत के भविष्य का निर्माण राष्ट्रभाषा करती है। राष्ट्रभाषा भारतीय हिंदी के उद्भव और विकास के साथ संबद्ध है, क्योंकि हिंदी हमारे राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्तिशाली और प्रधान माध्यम है। यह किसी प्रदेश या राष्ट्र की भाषा नहीं, क्षेत्र की भाषा नहीं है, बल्कि समस्त भारत के भारतीय के रूप में ग्रहण की जानी चाहिए। 1945 में उन्होंने कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना नहीं है, वह तो राष्ट्रभाषा है। दक्षिण भारत की तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाएं द्रविड़ परिवार की है, किंतु युग युगांतर से इन पर संस्कृत का इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि दक्षिण भारत और उत्तरी भारत का सांस्कृतिक शब्द भंडार सामान्य हो गया है। दक्षिण के तीर्थ स्थानों में हिंदी का व्यवहार बराबर होता आया है। अखिल भारतीय सेवाओं, व्यापार, यातायात, शिक्षा आदि के कारण लाखों दक्षिणात्य परिवार हिंदी से परिचित है। एक समय में मद्रास के युवकों ने गांधी जी से मांग की थी कि हमारे प्रांत में हिंदी प्रचारक भेजे जाए। वहाँ पर स्कूलों में हिंदी की शिक्षा अनिवार्य रही और यह अनिवार्य शिक्षा सी राजगोपालचारी आदि नेताओं के प्रयत्नों से वर्षों दी जाती रही है। 1929 में ही राजा जी ने दक्षिण वालों को हिंदी सीखने की सीख दी थी। उनका कहना था, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतांत्रिक भारत की राजभाषा भी होगी। स्वयं चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने 1937 में मद्रास में संपन्न हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा था कि कांग्रेस की सारी कार्यवाही हिंदी में हो। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया था। सर टी विजय राघवाचार्य ने कहा, चाहे व्यवहारिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से या राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए, हिंदी का कोई दूसरा प्रतिद्वंदी संभव नहीं है। किसी दक्षिण भारतीय ऐसे व्यक्ति को शिक्षित नहीं मानना चाहिए जिसने हिंदी में कोई लिखित या मौखिक परीक्षा पास न की हो, एवं हिंदुस्तान की सभी जीवित और प्रचलित भाषाओं में मुझे हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक योग्य दिखित पड़ती है। सर पीपी रामास्वामी अय्यर कहा करते थे, देश के विभिन्न भागों के निवासियों के व्यवहार के लिए सर्वसुगम और व्यापक और एकता स्थापित करने के साधन के रूप में हिंदी का ज्ञान आवश्यक है। जस्टिस कृष्ण स्वामी अय्यर और महामहिम अनंत संयनम आयंगर मानते रहे हैं कि हिंदी ही उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाली समर्थ भाषा है। एस निजलिंगप्पा ने एक जगह लिखा है, दक्षिण की भाषाओं में संस्कृत से बहुत कुछ लेन देन किया गया है, इसलिए उसी परंपरा से आई हुई हिंदी बड़ी सरल से राष्ट्रभाषा होने लायक है। प्रसिद्ध नेता और साहित्यकार रंगनाथ रामचंद्र दिवाकर ने कहा, जो राष्ट्रप्रेमी है उसे राष्ट्रभाषा प्रेमी होनी चाहिए। ऐसे ही विचार के भाष्यम, टी आर वेंकट रमन शास्त्री, एन सुंदरैया आदि नेताओं के रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते थे, मैं हिंदी के प्रचार, राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीयता का मुख्य अंग मानता हूँ। पंजाब के श्री लाला लाजपत राय ने राष्ट्रीय शिक्षण विद्यालय के द्वारा बहुत से बलिदानी प्रचारक तैयार किए जो राष्ट्रीय आंदोलन और समाज सुधारक के लिए हिंदी प्रचार का काम करते थे। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को हिंदी का प्रहरी कहा गया है। उनके प्रयत्नों से हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई जिसकी परीक्षाओं में लाखों विद्यार्थी बैठ चुके हैं। सम्मेलन ने अपने अधिवेशनों में हिंदी प्रचार की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की उपलब्धियां भी महत्वपूर्ण है। स्वाधीन आंदोलनों में हिंदी लेखकों और पत्रकारों ने सदा सहयोग दिया है। सच तो यह है कि भारतेंदु युग से ही अंग्रेजी शासन व्यवस्था के विरुद्ध लहर चल पड़ी थी। उस युग के साहित्यकारों ने इस बात की प्रशंसा भले ही की हो कि अंग्रेजी राज्य में सुख शांति है, परंतु अंग्रेज जो आर्थिक शोषण कर रहे थे उसके विरुद्ध उन्होंने जोरदार आवाज उठाई। भारत दुर्दशा और भारत जननी में बड़े कटु शब्दों में अंग्रेजों की नीति की आलोचना की गई थी। प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पत्र ब्राह्मण में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में और बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक लेखों में भारत देश के प्रति होने वाले अत्याचारों और आर्थिक शोषण से तिलमिलाती हुई जनता के आक्रोश को मुखरित किया। कलकत्ता से भारत मित्र 1878 ईस्वी से संपादकों बाबूराव विष्णु पराड़कर, अंबिका प्रसाद वाजपेयी और लक्ष्मी नारायण गर्डे ने राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए राष्ट्रीयता का प्रचार भी किया। कलकत्ता से ही रामानंद चट्टोपाध्याय का मासिक पत्र विशाल भारत कई वर्षों तक राष्ट्रीय चेतना को जगाता हुआ हिंदी की सेवा करता रहा। अन्य कवियों में श्रीधर पाठक का नाम इस प्रसंग में उल्लेखनीय है। 1900 ईस्वी में इलाहाबाद में सरस्वती के प्रकाशन के साथ हिंदी पत्रकारिता में एक नए युग का आरंभ हुआ। इस पत्रिका ने लगभग 60 वर्षों तक हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और इनके माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को चमकाने में भारी काम किया। अन्य मासिक पत्रिकाओं में माधुरी, सुधा, वीना, प्रभाव और विशिष्ट या चांद ऐसे नाम हैं। इन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपना अपना योगदान दिया है। प्रायः बहुत से राष्ट्रीय नेताओं ने अपने अपने पत्र निकाले। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी, महात्मा गांधी ने नवजीवन, आचार्य नरेंद्र देव ने संघर्ष, गणेश शंकर विद्यार्थी और बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रताप के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष को आगे बढ़ाया। इन पत्रों के कार्यालयों पर अंग्रेजी सरकार ने कई बार छापे मारे, प्रेस जब्त हुए और संपादक गिरफ्तार होकर जेल भेजे गए, परंतु हिंदी के इन पत्रों ने अपना कार्य नहीं छोड़ा। हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग में और उसके बाद कई लेखकों के नाम गिनाए जा सकते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना जगाने में प्रशंसनीय कार्य किया है, जैसे मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती द्वारा, गोकुल चंद्र शर्मा, गांधी, गौरव और तपस्वी तिलक द्वारा, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि बहुत से नाम हैं जिनका योगदान स्मरणीय होगा। हिंदी एकमात्र भारतीय भाषा है जिसमें उस भाषा के क्षेत्र के बाहर के साहित्यकारों ने भारी साहित्य लिखा। उस नामों में बंगाल के छिटी मोहन सेन, मन्मथ नाथ गुप्त, महाराष्ट्र से रे माचवे, गजानन मुक्तिमोर, गुजरात के कन्हैया मानिकलाल मुंशी आदि, तमिलनाडु के श्रीनिवासचारी हंस लाल, लक्ष्मी राघवन, डॉक्टर गोपालन, डॉक्टर शंकर राजू, आंध्र के बालकृष्ण राव, बालसौरी रेड्डी, रमेश चौधरी, अरिगपुडरी, आलुगी बैरागी चौधरी, ऋषिकेश शर्मा, मोहम्मद सत्यनारायण, केरल के चंद्र हसन, डॉक्टर भास्कर नायर, पंजाब के यशपाल, उपेंद्रनाथ अस्क इत्यादि उल्लेखनीय हैं। मोटरी सत्यनारायण को दक्षिण का टंडन कहा जाता है। हिंदी की इतनी भारी उपलब्धि सर्वदेशिकता और सर्वप्रियता उसकी राष्ट्रभाषा होने के प्रमाण है। यह सब स्वाधीनता के लिए जो संघर्ष होता रहा उसी के एक अंग थे और वही परंपरा पुराने लोगों में आज भी विद्यमान है। जैसे जैसे हमारा संघर्ष तीव्रतर होता गया वैसे वैसे हिंदी की शक्ति बढ़ती गई। 1942 से 1945 तक समय ऐसा था जब देश में स्वाधीनता की लहर सबसे अधिक तीव्र थी। तब जितने राष्ट्रगीत और राष्ट्रभावना से उत्पूर्त जितनी रचनाएं लिखी गई उतनी शायद किसी और भाषा में इतने व्यापक रूप से नहीं लिखी गई। उन दोनों हिंदी प्रेस सबसे अधिक सक्रिय थे। राष्ट्रभाषा के प्रचार के साथ राष्ट्रीयता के प्रबल हो जाने पर अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। समस्याएं। अब हमें स्वाधीनता प्राप्त हो गई और लगता है राष्ट्रभाषा का उद्देश्य भी उसके साथ समाप्त समझा गया। राजनीति ने जोर पकड़ी, प्रादेशिकता प्रबल हुई। 1956 ईस्वी में भाषावार प्रांत बन गए और हर प्रांत को अपने संकीर्ण प्रदेश की चिंता के साथ प्रादेशिक भाषा की चिंता होने लगी। कुछ प्रदेश में ऐसा भी नहीं हुआ, अपनी अपनी भाषा के विकास की चिंता सबको होती तो उसमें हिंदी का लाभ ही लाभ था, किंतु कुछ प्रदेशों को तो अंग्रेजी की चिंता होने लगी। हम गांधी को भूल गए और गांधी के विचारों को भूल गए। अंग्रेजों की दासता से मुक्ति तो हुई परंतु मानसिक दासता नहीं गई। हम विदेशी भाषा की दासता से मुक्त नहीं हो पाए। अब राष्ट्रीय भावना कहाँ है? जब राष्ट्रीयता ही नहीं है तो राष्ट्रभाषा की बात ही क्या? अंग्रेजी हमारी पराधीनता का अवशेष है। इसके रहते रूस, जापान, चीन, मिस्र आदि देश हमारी बौद्धिक और सांस्कृतिक समृद्धता पर संदेह करते हैं। अंग्रेजी पढ़ना बुरा नहीं है, किंतु बुरा यह है कि वह हमारे पत्र व्यवहार, वार्तालाप और विचार विनिमय का माध्यम हो। हिंदी भारत की सांस्कृतिक भाषा है, हमारी राष्ट्रीय चेतना की भाषा है। यदि सभी भारतीय इसका व्यवहार नहीं करेंगे तो बेबल का मीनार गिराने वालों की सी दुर्दशा हमारी भी होगी। राष्ट्रीय भाषा से तो राष्ट्रीय भावना दृढ़ रहेगी। यह बात उन भारतीयों से कही जा रही है जो अंग्रेजी को वह स्थान देने की चिंता में रहते हैं जो हिंदी को अपने जनतांत्रात्मक अधिकार से प्राप्त है। स्वातंत्रोत्तर युग में राष्ट्रभाषा हिंदी को इस अधिकार से वंचित करने के लिए अंग्रेजी दानों के द्वारा अनेक षड्यंत्र रचे गए। हिंदी भाषियों को उकसाया जा रहा है कि हिंदी वाले सारे देश पर छा जाना चाहते हैं। हिंदी की उन्नति से शेष प्रादेशिक भाषाएं पनपने नहीं पाएंगी। केवल हिंदी ही क्यों, सारी देश की भाषाएं राष्ट्रभाषाएं हैं, जैसी कि रूस में है। भारत की अनेक भाषाएं जिसमें हिंदी की अपेक्षा बहुत समृद्ध और पुराना साहित्य है आदि आदि। माना कि हमारे देश की सब भाषाएं राष्ट्र की भाषा है, परंतु हिंदी सार्वदेशिक भाषा है। किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा की पदवी मिलनी ही चाहिए। जिस तरह झंडे अनेक संप्रदायों, जातियों और दलों के हैं, किंतु राष्ट्रध्वज एक है। इस धरती के गीत राष्ट्र के गीत है, परंतु राष्ट्रगीत की पदवी एक गीत को दी गई है। इसी तरह एक पक्षी राष्ट्र पक्षी और एक पशु राष्ट्र पशु है। एक चक्र हमारा विशिष्ट राष्ट्र चिन्ह है। राष्ट्रभाषा की स्थिति भी यही होनी चाहिए। यह भी माना कि हिंदी की अपेक्षा अनेक भाषाएं अधिक समृद्ध है, परंतु श्रेष्ठता सार्वदेशिकता का प्रमाण नहीं। प्रजातंत्र में तो बहुमत को मान्यता मिलती है। वास्तविकता यह है कि हिंदी वाले सब भाषाओं की उन्नति चाहते हैं क्योंकि इसमें हिंदी का कल्याण है। खेद है कि भाषा का प्रश्न राजनीतिबाजों के हाथों में चला गया है। राष्ट्रभाषा का प्रश्न राष्ट्र के सम्मान का प्रश्न है। यदि हिंदी को न माना जाए तो सवाल उठता है कौन सी भाषा पूरे देश की एक भाषा हो सकती है, तमिल, बंगला, मलयालम या उड़िया। देश के एक छोर की भाषा पूरे देश में व्याप्त नहीं हो सकती। कुछ लोग हिंदी के लिए राष्ट्रभाषा शब्द पर आपत्ति करते हैं, कहते हैं कि एक संपर्क भाषा कोई हो सकती है। हिंदी विरोधी अंग्रेजी को संपर्क भाषा रखना चाहते हैं। एक वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि संस्कृत को संपर्क भाषा माना जाए। इस समय राष्ट्रभाषा हिंदी एक समस्या बनी हुई है क्योंकि विघटनकारी शक्तियों का जोड़ है। स्वतंत्रता प्रिय और राष्ट्रवादी भारतीयों के सामने बड़ा भारी प्रश्न है कि पूरे राष्ट्र के लिए एक भाषा होनी भी चाहिए या नहीं। राष्ट्र की भाषाएं और राष्ट्रभाषा हिंदी, हिंदी विरोधियों ने एक प्रश्न उठाया कि हिंदी की एकमात्र राष्ट्रभाषा क्यों, गुजराती, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु आदि राष्ट्रभाषाएं कैसे नहीं। हमारा कहना यह है कि अपने देश की कोई भी भाषा हमारे राष्ट्र की बहुमूल्य और सम्माननीय भाषा है, परंतु राष्ट्र के अंदर एक भाषा और पूरे राष्ट्र की एक सामान्य भाषा मानने में अंतर है। तमिल, मलयालम, मराठी, उड़िया, बंगला आदि राष्ट्र की भाषाएं, हिंदी पूरे राष्ट्र की भाषा है। हमारी नेताओं ने एक स्वर में इसी को सारे देश की संपर्क भाषा मानकर राष्ट्रभाषा का और अन्य भाषाओं को राष्ट्र की नाना भाषाएं मानकर इन्हें हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में परिगणित किया गया। इनमें से किसी भी भाषा या बोली का निरादर नहीं है। सवाल राष्ट्रीयता बनाम प्रांतीयता का है। हमारे देश में कितने ही सुंदर उपयोगी पक्षी है, तोता, मैना, कबूतर, बाज, शिकारा, परंतु मूल राष्ट्रीय पक्षी है। इससे अन्य पक्षी न अभारतीय है न अराष्ट्रीय। राष्ट्रीय पशु चीटा माना गया, इससे हाथी, सिंह, हिरण, गाय आदि के प्रति हमारे आदर और गर्व पर प्रश्न क्यों लगे। एक राष्ट्र में एक राष्ट्रभाषा हमारे गौरव और हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का प्रतीक है। सार्वदेशिक, सर्वराष्ट्रीय या पूरे देश की संपर्क भाषा बनने या मान्य होने के लिए विद्वानों ने निम्नलिखित अर्हताएँ गिनाई हैं। वह राष्ट्र में बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जाती हो, उसका अपने क्षेत्र से बाहर भी व्यापक विस्तार हो, वह राष्ट्र की सांस्कृतिक और भाषिक विरासत की सशक्त उत्तराधिकारी हो, उसकी व्याकरणिक संरचना सरल, सुबोध और वैज्ञानिक हो, उसकी शब्द सामर्थ्य और अभिव्यंजनात्मक क्षमता उत्तम हो, उसमें जीवंतता और सजीवता हो ताकि वह नए शब्दों और प्रयोगों को आत्मसात करते हुए विकासोन्मुख हो रहे और उसकी लिपि पूर्ण और वैज्ञानिक हो। भारत की भाषाओं में केवल हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें उपयुक्त सद्गुण पाए जाते हैं। हिंदी भारत के सबसे बड़े भूभाग में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के लोगों की अर्थात 43% जनता की मातृभाषा है, और इसके अतिरिक्त हिंदी प्रदेश के आसपास पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल और आसाम के अधिकतर लोगों की दूसरी भाषा है, एवं दक्षिण के बहुत से लोग दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में इसे भली प्रकार बोलते समझते हैं। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत आदि की भी पूर्णतया उत्तराधिकारी है। विरासत में मिला युग का सांस्कृतिक साहित्य हिंदी ने ही प्रचारित किया। हिंदी अत्यंत सरल और वैज्ञानिक भाषा है। काबुल का पठान या कश्मीर का ठेठ व्यक्ति भारत के नाना प्रदेशों में घूमता है या निवास करने लगता है तो वह पड़ोस की भाषा पंजाबी प्रायः नहीं सीख पाता, परंतु वह सर्वत्र हिंदी बोलता है। विदेशों से भी जो पर्यटक आते हैं वे जो किसी भारतीय भाषा को आसानी से अपना लगाव बना लेते हैं वह हिंदी से ही है। एक अंग्रेज ने यहाँ तक कहा कि एक पोस्टकार्ड पर हिंदी का सारा व्याकरण आ जाता है। हिंदी का शब्द भंडार अत्यंत समृद्ध है और इसमें देशी विदेशी सब तरह के शब्दों को पचाने की अद्भुत क्षमता है। इससे यह भारत की प्रगतिशील भाषा कही जाती है और भारत की सामाजिक संस्कृति का सशक्त माध्यम है। देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है और हाल में जो नए वर्ण इसमें जोड़े गए हैं उनसे यह भारत की किसी भाषा को लिप्यांकित करने में समर्थ है। यही बातें हमारे देश के नेताओं ने कही है। संपर्क भाषा हिंदी समाज की कोई सुगठित इकाई होगी और तो उसकी एक संपर्क भाषा अवश्य होती है। छोटी से छोटी इकाई अर्थात परिवार से लेकर गांव या नगर, जिला, प्रदेश, देश या राष्ट्र तक एक इकाई हो सकती है, और हम तो वसुधैव कुटुंबकम मानने वाले हैं। सब इकाइयों में विचार विनिमय, भावाभिव्यक्ति, लेन देन, विचार व्यवहार के लिए कोई एक भाषा अवश्य है, अन्यथा उस इकाई का रोजमर्रा का काम नहीं चलता। वह भाषा उस इकाई के स्तर के अनुसार शब्दों और वाक्यों या अभिव्यक्तियों में लघु, सीमित या बड़ी और विस्तारपूर्ण हो सकती है, पर उससे उस सामाजिक इकाई का सारा काम संपन्न होता है। उस भाषा के बिना वह समाज समाज नहीं बनता। किसी गूंगे बहरी पति का विवाह गूंगा बहरी पत्नी से हो जाए तो भी वे एक इंगित भाषा का विकास कर लेते हैं, वरना घर गृहस्थी का काम नहीं चल सकता, घर घर ही नहीं हो सकता। यही बात छोटी बड़ी सब इकाइयों की है। एक कथा आती है, बाबल नगर के निवासियों ने मिलकर एक मीनार बनाने की योजना बनाई। उसमें एक भाषा का व्यवहार होता था। काम शुरू हुआ तो जो सामान मांगा जाता हाजिर हो जाता, कार्य में जो प्रगति होती उसका लेखा जोखा तैयार कर लिया जाता और आगे काम कैसा होगा, कोई अड़चन तो नहीं होगी, सारी सामग्री तैयार या कहीं कमी है, इत्यादि बातों पर विचार विनिमय कर लिया जाता और निर्माण कार्य बहुत तेजी से बढ़ता जाता। मीनार ऊंचा होता गया और आसमान को छूने लगा। तब अल्लाह मियाँ को आशंका हुई कि ये लोग तो मेरे दर्जे तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने सब में अलग अलग भाषा भर दी। अब क्या हुआ, राजमिस्त्री पत्थर के ढोके मांग रहे हैं, तब सब एक दूसरे का मुंह ताकते खड़े हैं। कोई चूना गाड़ा मांग रहा है, कोई पार बांधने के बांस और रस्सी के लिए चिल्ला रहा है, कोई बेलचे या फड़ुए की बड़ा फरियाद कर रहा है, या कोई किसी का सुनता समझता नहीं, काम ठप्प हो गया। लोग मिलते हैं तो विचार विमर्श, कोई परामर्श नहीं होता, आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, अंतः सारी जाति का नाश हो जाता है। यह तो निश्चित और निर्विवाद है कि हर जाति या देश की एक संपर्क भाषा होनी ही चाहिए, एक ऐसी भाषा जो उस देश में कहीं चले जाने पर काम आए, अर्थात जिसका व्यवहार देशव्यापी हो, और यदि कोई देश राष्ट्र हो तो उस संपर्क भाषा को राष्ट्रभाषा ही कहेंगे। देश और राष्ट्र में अंतर है। 1947 से पहले भारत देश तो था पर वह राष्ट्र नहीं था, क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं था। उसकी अपनी अपने लोगों के वश में और अपने ही लोगों से बनी सेना नहीं थी। उसकी कोई अपनी विदेश नीति नहीं, स्वदेश नीति नहीं, आर्थिक नीति भी अपनी नहीं थी और शिक्षा नीति भी गैर के हाथ में थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ भारत देश एक राष्ट्र बन जाता है। अब हमारी योजनाएं राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होती है। सारे राष्ट्र के हित में बनती है और ना किसी व्यक्ति या गैर व्यक्तियों के लिए और ना किसी गैर देश के लिए। हम भारतीय हैं, भारत एक है और हम एक हैं। सर्व भवति एक दीनम संगच्छम संबद्धम सौम वो मनंसी जानतम। हम एक साथ चलने वाले, एक साथ बोलने वाले, एक दूसरे को मन को जानते हुए साथ साथ सोचते हैं। हमारी इस एकता के प्रतीक है एक राष्ट्र ध्वज, एक राष्ट्र पशु, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रभाषा। यह अंतिम शब्द कहते हुए डर लग रहा है उन पृथकतावादियों और प्रांतीयतावादियों से जिनका उल्लेख किसी अध्याय में पहले कर दिया गया। हम तो मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र की एक राष्ट्रभाषा होती है। चीन बहुत बड़ा देश है, उनमें भी कई भाषाएं, पर वे सब राष्ट्रभाषाएं नहीं है। चीनी एकमात्र राष्ट्रभाषा है। इसी तरह हिंदी की एक राष्ट्रभाषा है और वह है हिंदी। व्यवहार में हम देखते हैं कि हिंदी भारत के कोने कोने में व्याप्त है। कहीं चले जाइए हिंदी बोली और समझी जाती है। इस पर पीछे काफी बहस हो चुकी है। कोई इसे राष्ट्रभाषा नहीं मानना चाहता तो उसे अपनी मान्यता का प्रकाश करने का अधिकार है, पर वह इतना तो स्वीकार करता है कि पूरे राष्ट्र की एक संपर्क भाषा होनी चाहिए और वह हिंदी ही है। यथार्थ हम संकेत करना चाहेंगे कि संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर है। हिंदी संपर्क भाषा भारत भर में युग युग से रही है। दक्षिण से आकर माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य और अन्य आचार्य सारे भारत में इसी भाषा के माध्यम से अपने धार्मिक विचारों का प्रचार करते रहे। भारत के राष्ट्र बनने से पहले भी हमारे तीर्थ थे और बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि प्रदेशों के लाखों यात्री इसी भाषा का व्यवहार सीख जाते थे। दक्षिण के तीर्थों तिरुपति, मदुरई, कन्याकुमारी और रामेश्वर तक उत्तर भारत के लोग जाते थे तो हिंदी से काम चलता था। बहुत सी ऐसी बातें पहले के पृष्ठों में कही गई हैं। आज तो स्थिति और बेहतर हो गई है। रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, समाचार पत्रों के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा है। बहुत से राज्यों में स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक में हिंदी में शिक्षा होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उड़ीसा, असम, बंगाल और कर्नाटक के युवक हिंदी सीखते हैं। देश की राजधानी हिंदी प्रदेश में है। लाखों लोगों को मंत्रालयों, सचिवालयों, निदेशालयों और अन्य कार्यालयों में काम पड़ता है। उच्चतम न्यायालय भी दिल्ली में है। सभी प्रदेशों के बहुत से लोग हिंदी प्रदेश के नगरों और महानगरों में नौकरी करते हैं। वे और उनके बच्चे विशिष्ट स्कूलों में, खेल के मैदानों में, मोहल्लों में बहुत जल्दी हिंदी का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनके माता पिता बड़े शौक से बच्चों को हिंदी की शिक्षा दिलवाते हैं। जो लोग हिंदी का विरोध करते हैं वे भी अपने बच्चों का कल्याण इसी में समझते हैं कि हिंदी सीखे। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में अपने आप उज्ज्वल हो रहा है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है ही। इतना बड़ा देश है, कहीं चले जाइए हिंदी से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह मानना पड़ता है किसी देश की भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता प्राप्त हो जाए तो उस भाषा को उस देश की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, उसका सामाजिक स्तर ऊंचा हो जाता है, देश की प्रतिष्ठा में चार चांद लग जाते हैं। बाहर के लोगों को भी जान पड़ता है कि देश एक है, अखंड है और एकात्म है। संपर्क भाषा होने से कोई भाषा राष्ट्रभाषा नहीं कहला सकती, परंतु राष्ट्रभाषा होने से वह संपर्क भाषा तो होती ही है। चलो आप राष्ट्रभाषा शब्द की व्याख्या करते समय भाषा को भी राष्ट्रभाषा कहना चाहते हैं तो मुबारक। आप हिंदी को संपर्क भाषा तो मानते हैं, यह भी मुबारक, परंतु सच्चे दिल से मानिए हिंदी का अध्ययन मत छोड़िए। जब दूसरी भाषा जानने वालों से बातचीत करते हैं, अर्थात जो आपकी भाषा से अनभिज्ञ है, उसके साथ हिंदी में बातचीत कीजिए, अंग्रेजी में नहीं। विडम्बना यह है कि आप अपने देश की किसी भाषा में उससे बात न करके गैर देश की भाषा का व्यवहार करते हैं। इससे देश का अपमान होता है। आप रेलवे के सामान्य डिब्बों में यात्रा करते हैं जिसमें पंजाबी, बंगाली, तमिलियन, गुजराती के कई लोग बैठे। सामान्य वार्तालाप हिंदी में चलता ही है, परंतु जब ऊंचे दर्जे में जाते हैं तो अंग्रेजी में बातचीत करने लग जाते हैं। यह तो ना देश प्रेम है ना भाषा प्रेम। कभी हिंदी बोलने वाले डिब्बों में बातें करते भविष्य के घनिष्ठ संबंध बन जाते, लेकिन अंग्रेजी वाले ऊंचे डिब्बों के लोगों में बातें हुई और फिर संबंध रिश्ते वही डिब्बे में छूट जाते। कभी किसी से मित्रता बन सकती हो तो स्वार्थ हो और अपने काम धंधों के निमित्त। सेकेंड क्लास या यात्री आपकी भाषा भी कुछ कुछ सीखने लगता है। फर्स्ट क्लास या यात्री बरसों आपके देश में रह जाएगा, वहां की भाषा नहीं सीखेगा। सब भाषाओं के प्रति सद्भावना। हिंदी भाषी आपकी भाषा का सम्मान करता है। भारत के संविधान में देश की सब भाषाओं को गौरवपूर्ण स्थान मिला है। भारत किसी राज्य को अथवा उसके किसी भाग को अपनी भाषा बनाए रखने का अधिकार है। सब भाषाएं अपने अपने क्षेत्र या समाज के कार्यों को सिद्ध करने के लिए उपयुक्त और पूर्ण है। हिंदी सबसे कुछ ले सकती है, शब्द, मुहावरे और विचार, और लेती रही है, इस कारण समृद्ध होती रही है। हिंदी में संस्कृत का सारा साहित्य प्राप्त है। हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। संस्कृत का सारा शब्द भंडार मूल अर्थों सहित हिंदी से ले लिया गया, वही लिपि, वही वर्तनी। हिंदी का व्यवहार अपने देश की संस्कृति की सुरक्षा का पर्याय है। राज्य के ऊपर राष्ट्र है। जहाँ आप अपने राज्य की भाषा का सम्मानपूर्वक अध्ययन और व्यवहार करते हैं, वहाँ साथ ही राष्ट्र की प्रमुख भाषा जो आपको सारे देश में सुलभ है, जिसके बोलने समझने वालों की संख्या सबसे अधिक है, इसका भी दूसरी भाषा के रूप में व्यवहार कीजिए। इन पंक्तियों का लेखक पंजाबी है। उसने पंजाबी की एक उपबोली पश्चिमी पंजाबी का एक शब्दकोश और व्याकरण भी लिखा। पंजाबी उसकी माँ है और वह उससे पुत्र की तरह प्यार करता है, परंतु साथ ही हिंदी से उसका गहरा लगाव है। उसने हिंदी की भी सेवा की है। मैंने इसके माध्यम से अनेक बड़े बड़े साहित्यकारों से अपना संपर्क दृढ़ किया और सच पूछिए तो बहुत लाभ उठाया। हिंदी तो सबकी है। भारत देश में 367 भाषाएं हैं। उनमें 58 भाषाएं एक अच्छे खासे वर्ग द्वारा बोली जाती है और 18 भाषाएं अपने अपने राज्य में राज्य भाषाएं हैं। ऐसे में हमारे नेताओं ने ठीक ही सोचा और देश को बांधने वाली एक ही भाषा होनी चाहिए तो हिंदी ही राजभाषा बनी। इसी प्रकार अपने राज्य से बाहर संपर्क स्थापित करने के लिए, व्यापार के लिए, यात्रा के लिए, तीर्थाटन करने के लिए, स्थान परिवर्तन होने और अथवा किन्हीं अन्य हितार्थों के लिए कोई भी व्यक्ति 18 भाषाएं नहीं सीखता। जब मास्टर की जेब में हो तो 18 चाबियों कोई न उठाता फिरेगा। ऐसी एक सुलभ भाषा है जिससे सारे देश में काम सज जाए, वह हिंदी ही है, मास्टर की सरल भाषा। बहुत से महानुभावों का आग्रह है कि भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए, संपर्क भाषा तो सरल होती ही है, वही पत्र व्यवहार में थोड़ी औपचारिक हो जाती है तो विषय के अनुकूल थोड़े से शब्द कहीं ना कहीं कठिन आ जाते हैं। जब दो व्यापारी संपर्क में आते हैं तो कुछ एक उनके धंधे से संबंध यथार्थ परिभाषिक शब्द आएंगे ही। भाषा विषय वक्ता श्रोता या संदर्भ के अनुसार सरल और कठिन हो सकती है। सरलता और कठिनता सापेक्ष शब्द है। आपके लिए जो शब्द प्रयोग और प्रयोग सरल है वही आपसे कम पढ़े लिखे व्यक्ति को कठिन जान पड़ते हैं। कहानी की भाषा सामान्यतया सरल होती है, उससे कठिन कविता की, कई निबंध लेखक की शिक्षा दीक्षा के हिसाब से अत्यंत दुरूह जान पड़ते हैं। विज्ञान की भाषा अविज्ञानी के लिए अत्यंत कठिन हो सकती है। विधि का प्रसंग वकील और न्यायाधीशों के लिए सरल किंतु प्रायः सामान्य व्यक्ति की समझ से बाहर होता है। फिर भी यह ठीक है किसी किसी वक्ता या लेखक की शैली जटिल होती है और पंडिताओं शब्दों के प्रयोग से बोझिल होती है। कार्यालयों की शैली कुछ ऐसी ही हो गई है, इसे देखकर डाक से भेज दे इस वाक्य के स्थान पर, इसका अवलोकन करके डाक द्वारा प्रेषित कर दे। ऐसी भाषा कृत्रिम हो जाती है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक प्रयोग, जबकि तद्भव शब्द आसानी से उपलब्ध हो तो भाषा को अस्वाभाविक तो बना ही देता है, परंतु हमारी समझ में संपर्क भाषा तो सरल होती ही है क्योंकि उसमें तद्भव शब्द और जाने माने सामान्य प्रयोग अधिक चलते हैं। इसमें व्याकरण के नियमों का पालन भी कड़ाई से नहीं होता। हिंदी भाषी और हिंदी प्रेमियों की भूमिका। देखने सुनने में आया है हिंदी जिनकी मातृभाषा है उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्हें हिंदी तरभाषियों से के सामने हिंदी में बात करने में संकोच होता है, इससे मौका अनादर होता है। संसद में, विधानमंडलों में, व्यापार में, साधारण मुलाकात में ऐसे लोग अंग्रेजी का प्रयोग करके शायद शिक्षित होने का प्रमाण देना चाहते हैं, यह हीन भावना है। हिंदी से प्रेम होने का प्रमाण दीजिए। आप अपने अधिकारी से कह सकते हैं कि हिंदी में बातें सुनने से आपको लाभ है, इससे हिंदी ज्ञान बढ़ेगा, आपकी झिझक दूर होगी, आपको हिंदी प्रदेश में रहना और कार्यालय से बाहर भी, इससे आपसे संपर्क विस्तृत होंगे, कार्यालय में भी आप हमें और हमारे काम को समझेंगे तो कार्यकुशलता बढ़ेगी इत्यादि। विदेशियों से हिंदी में बात करना उनके हित में है, वे तो इतनी दूर में हिंदी सीखने आते हैं, जेब में एक एक प्रति हिंदी स्वयं शिक्षक नाम की पुस्तक रखे रहते हैं, वे हिंदी सुनना चाहते हैं। विदेश में सर्वत्र देखा गया है, रेलवे स्टेशनों पर, होटलों और रेस्तरां में, डाक्टर घर में, हवाई अड्डे पर, बाजार में, खेल के मैदानों में, सब अपनी अपनी भाषा में विदेशियों से बातें करते हैं। जिनके पास द्विभाषी फेसबुक रहती है, बुक रहती है, जिनमें अनेक कार्यक्षेत्रों से संबंध शब्दावली के साथ बातचीत के प्रश्नोत्तर रहते, जैसे डाकघर किधर है, मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ, पोस्टकार्ड लिफाफे किस खिड़की से मिलेंगे, तार के फॉर्म कहाँ पड़े हैं इत्यादि। इसी प्रकार दुकानदार से, किसी खिलाड़ी से, किसी कार्यालय के बाबू से बातचीत करने के वाक्य उस पुस्तक में होते हैं जिन्हें वह सैलानी बड़े शौक और अध्यवसाय से पढ़कर याद कर लेता है। भारत में भी अंग्रेजी, हिंदी, जर्मन हिंदी, फ्रेंच हिंदी दिग्दर्शिकाएँ मिलती हैं, परंतु इनकी बिक्री बहुत कम हो पाती है क्योंकि विदेशी सैलानी समझता है कि उसका काम अंग्रेजी से ही चल जाता है। यह हमारे लिए शर्म की बात है। जीवन के बहुत से पक्ष ऐसे हैं जहाँ हिंदी भाषी अपनी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी का व्यवहार करता है, और तो जब वह अपने मित्रों से मिलता है और किसी विषय पर चर्चा होती है तो अंग्रेजी में, वह भी अपने बच्चों को डांटता है तो भी अंग्रेजी में। यह क्या विडम्बना है, जब आप ही संपर्क भाषा हिंदी नहीं बोलते तो दूसरों को क्या और कैसे उपदेश दिया जा सकता है। संपर्क भाषा हिंदी का व्यवहार पहले अपने घर में और फिर बाहर होगा, तभी आपकी मातृभाषा, राजभाषा, राज्यभाषा या राष्ट्रभाषा का कल्याण हो सकेगा और देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समाप्त।